सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश देविका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि हा देविका कुवर गदगद याज्ञवाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवत उद्घटरति अस्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य कृत्वा तव मणि जडन अंगश्याम विंशताभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डं जागुदरुचि संविदध तंगपट्टम्बरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं विदिलसद्दामाभिरामोदर राधास्कंद निवेशितोज्जलभुजं ध्यायेन्दापराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणागतं गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैतायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तं सर्वभूत पाठ करते करते वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन के कुंज गली में खो गए। बस वंदना हो गई। हम लोग कल जैसे जैसे नवदीप धाम की परिक्रमा हम लोगों ने की, थोड़ा सा आरंभ किया था संक्षेप में, कैसे कैसे हम लोगों ने परिक्रमा की। हम लोग 10,000 आदमियों को साथ लेकर के नवदीप से निकल करके, और कितने सन्यासी ब्रह्मचारी सैकड़ों कीर्तन करते करते हम लोग गंगा को पार करके और गोद्रम द्वीप के अंतर्गत स्वरूपगंज में स्वरूप सानंद सुखद कुंज में भक्ति विनोद ठाकुर जी के वहाँ पर पहुँचे, और उनके संबंध में कल हमने कुछ बतलाया जो वहाँ पर हम लोगों ने बताया। तो वहाँ से हम लोग फिर चलते चलते गोधाम के अंतर्गत में जहाँ पर शंकर जी का निवास है उसको कहते हैं हरिहर क्षेत्र। वहाँ पर शंकर जी और हरि दोनों अभिन्न भी हैं। ये शंकर जी सदाशिव के रूप में विष्णु तत्व है, और उनसे अभिन्न ही किंतु भिन्न जगत के शिष्ट स्थिति प्रलय करने वाले जो शंकर जी हैं उनसे मिले, उन्हीं से जो विष्णु हैं सदाशिव उन्हीं के ये अंश हैं, उनके प्रकाश हैं। कौन? जगत के प्रलय करने वाले शंकर। इसलिए वो हरि और ये हर दोनों एक है। आया समझ में? वो हरि और हर दोनों एक, किंतु सब विषयों में एक नहीं है, क्योंकि मूल अंश ही सदाशिव है और उनके अंश ये शंकर जी और उनकी शक्ति पार्वती जी, और वहाँ पर उनकी अंशनी के रूप में, अंश के रूप में सदाशिव। वहाँ पर हमने ये मैंने बतलाया, शास्त्रों में विभिन्न जगहों में विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए हुए। तुलसी की रामायण के अनुसार में शंकर जी से और भगवान का, कृष्ण या राम का तीन संबंध है। एक स्थूल जगत का संबंध और एक नित्य जगत का संबंध और एक लीलागत संबंध, तीन संबंध में है। नित्य संबंध गोलोक वैकुंठ धाम में ये सेवक शंकर नित्य उनके सेवक, प्रिय सेवक, रसिक सेवक, इसलिए प्रियत्व के हेतु से अभिन्न है। जैसे घर में स्त्री और पति कहीं काम पर चले गए हैं, कोई चिट्ठी आया या रुपया पैसा आया कहीं से, तो डाकिया ने उनका नाम लिया पति का, तो पति पत्नी वहां पर हाजिर हो गई, बोलिए से क्या है, तो ये पत्र है दे दीजिए मुझे। तुम कौन है, तुम वो हो, तो हाँ मैं ही हूं। तुम कौन है, मैं उनकी पत्नी। डाकिया दे देगा कि नहीं, उनको पत्र दे देगा। और कोई विशेष चीज होगी तो उसके लिए वो लिख करके दे जाएंगी, जैसे ये हमारा इनको मिल जाना चाहिए तुमको मिल जाएगा। और साधारण जितने चीज उसका उत्तराधिकारी वो या उनका लड़का होता है। तो प्रियत्व के हिसाब से गुरु जी या शंकर जी भगवान से अभिन्न है, प्रियत्व की दृष्टि से। और सेवक की दृष्टि से उनके प्रिय सेवक ये शंकर जी। तो ये नित्य धाम में उनका सेवक और सेव्य का वहां पर नित्य संबंध है, वो सेवक हैं और कृष्ण या राम सेव्य हैं। वही जब लीला में अवतरित होते हैं तो लीला का एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, यहां पर इस जगत में जब वो दोनों एक साथ में रहेंगे तब तो सखा का भाव होगा, और साधारण रूप में रामचंद्र जी लीला के रूप में जब अवतरित होंगे तो शंकर को अपना प्रभु मान लेंगे और उनकी सेवा को प्रचलित करने के लिए यही दिखलाएंगे कि मैं उनका सेवा करता हूं। जागतिक रीति से नर लीला में शंकर जी की स्थापना आराम करेंगे, कृष्ण भी ये गोपेश्वर महादेव की स्थापना कर सकते हैं, कामेश्वर महाराज की भी को प्रणाम कर सकते हैं। रंगेश्वर में आए होंगे तो हो सकता है कि रंगेश्वर में कृष्ण ने भी प्रणाम किया हो। ये लीला है नर लीला, नर लीला में ऐसा होता है। नर लीला में एक साधारण ब्राह्मण भी नंद भवन में पहुंच जाए तो नंद बाबा और यशोदा जी उस ब्राह्मण को प्रणाम करके कृष्ण को उनके चरणों में डाल दें, ये नर। और उस जगत में वो दोनों सेवक से पुष्प, और जब दोनों एक साथ में रहेंगे तो सखा के रूप में।
नरलीला में या उस जगत में सखा के रूप में,
इस जगत में भी जब आमने सामने रहेंगे, जैसे कि जब युद्ध हुआ उनसे
बानासुर
इत्यादि का, तो वो दोनों सखा मिल गए किस तरह से। तो स्वामी सखा उसे कितने रामायण का है, स्वामी सखा और दास सीएपी के माने रामचंद्र जी के, दास भी हैं सखा भी हैं और स्वामी। नर लीला में स्वामी, नित्य लीला में दास और साधारण रूप में लोगों के बीच। और पुराणों की दृष्टि से, पद्म पुराण की दृष्टि से रामचंद्र जी ने शंकर जी की स्थापना की वहां रामेश्वर में। उस समय में जब स्थापना हो गई तो जितने लोग ब्राह्मण और जितने लोग थे सब लोगों ने शंकर जी की पूजा आरंभ की। रामचंद्र जी भी पूजा कर रहे हैं। उस समय में ब्राह्मणों ने जय दे करके कहा रामेश्वर महादेव की जय, और उसका अर्थ लगाया रामस्य ईश्वर रामेश्वर, राम के ये प्रभु हैं, रामचंद्र जी ने स्थापना करके इनकी आराधना की, इसलिए राम के ये ईश्वर है। तो वहां पर देवता लोग भी उपस्थित थे, उन्होंने हो हल्ला कर दिया यार ये तुम लोग जानते नहीं हो, ये दोनों ईश्वर सखा हैं परस्पर, रामस्य असौ, असौ माने शंकर, रामस्य असौ ईश्वर, राम भी ईश्वर है और शंकर जी भी, द्वंद तत्पुरुष,
द्वंद समास,
द्वंद समास, द्वंद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष नहीं होता है, नहीं द्वंद समास ही होता है, द्वंद समास, और तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष में रामस्य ईश्वर, राम के ये ईश्वर, और राम एव ईश्वर, राम शंकर जी के ईश्वर है,
राम
जस्य ईश्वर, राम ये हुआ, राम ही जिनके ईश्वर है, असल में राम ही उनके ईश्वर। गोपीश्वर का अर्थ क्या होगा, गोपी ईश्वर है जिनके, वो है गोपीश्वर। साधारण आदमी जानता है कि गोपियों के वो ईश्वर, किंतु गोपी ही जिनके लिए ईश्वरी है ईश्वर, या इस तरह से, जबकि रामस्य असौ ईश्वर, तो मूर्ति उनकी मूर्ति में से एक आवाज निकली बड़ी जोर से, गंभीर आवाज, यह गलत है, मैं खुद कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, राम जस्य ईश्वर, राम ही हमारे ईश्वर है, इसलिए इनका नाम। इसलिए ये तीन प्रकार के नाते उनसे हैं। भक्त भी कभी कभी उनका गुरु बन जाता है, जैसे गर्ग ऋषि कृष्ण के कौन है, गुरु है ना, यशोदा मैया नंद बाबा कौन है, बलदेव जी उनके गुरु बन गए। नंद बाबा के गांव में रहने वाले जितने भी प्रौढ़ व्यक्ति हैं वो सब कृष्ण के पूज्य हैं। वहाँ का यदि नीची जाति का भी कोई व्यक्ति है, बढ़ई है, कुर्मी है, पानी देने वाला है, और बड़े उम्र में है ना, तो कृष्ण उसको कहें चाचा जी, बाबा, और सब लोग कृष्ण को आशीर्वाद दें ऐसे। और भी हमने बताया था श्रीमद् भागवत से दो तीन उदाहरण लेकर के, कभी कभी जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, शंकर को भी कुछ अपने भक्तों के कारण कुछ अपमान सहना पड़ता है, जैसे वो पौंड्रीक वासुदेव था, श्रीगाल वासुदेव, श्रीगाल किसको कहते हैं, हुआ 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 कुछ नहीं हुआ, इसको कहते हैं सियाल, क्या हुआ, हुआ 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 क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसको कहते हैं सिगार, बेकार का वो चिल्लाता। तो एक ऐसे ही राजा था कृष्ण के समय में, अपने को कहा जा रहे मैं वासुदेव कृष्ण हूं, और लकड़ी के दो हाथ एक यहां यहां लगा करके चार हाथ बना दिए, और अपने को पौंड्रीक वासुदेव कहता था, और अपना दूत भेज दिया कृष्ण के दरबार में, मैं वासुदेव असल वासुदेव, तुम नकल वासुदेव कहां से हो करके, और दो भुजाएं तुमने जो लगा रखी है आर्टिफिशियल बनावटी, उसको तुम निकाल कर रख दो, और नाम अपना लिखना बंद करो, और कहना मैं वासुदेव, और यदि तुम नहीं मेरी बात मानता तो मैं आ करके हाथ भी उतार दूंगा और गला भी उतार दूंगा। इसका जवाब जल्दी से हमको दो, और नहीं तो हम आक्रमण करें। तो चिट्ठी उसकी पढ़ी गई कृष्ण के दरबार में, उद्धव जी ने पढ़ा तो कृष्ण हंसने लगे और सब लोग हंसने, ये श्रीगाल है, इसलिए कृष्ण ने उसका नाम रख दिया श्रीगाल वासुदेव। अजय ठीक है, मैं झूठा हूँ तुम ही सच है, तो ये रणक्षेत्र में मालूम होगा। ऐसा कह करके सेनाएं लेकर के चल पड़े और भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में दोनों तरफ से जब लड़ाई हुई तो देखा जाए ये तो हमारे प्राण हर लेंगे, तो काशी के विश्वनाथ को उन्होंने पुकारा, उनके इष्ट देव पांडिक वासुदेव,
काशी नरेश भी योगदान किया उनके
साथ, और काशी नरेश को भी निमंत्रित किया, वो भी आया। तो काशी नरेश से भी और इनसे कृष्ण से युद्ध होने पर कृष्ण ने उसको भी काट डाला, उसके हाथ दो पहले काट दिए, फिर उसका देखते देखते गला काट दिया। और जो वासुदेव का मित्र जो काशी नरेश था उसका गला काट करके और अपने चक्र के साथ में वाराणसी में फेंक दिया
राजभवन।
अब उसका लड़का था बड़ा युवक, वो भी वीर था, उसने देखा था हमारे पिताजी का सिर कट करके यहाँ पर आ गया, वो तो गए थे युद्ध करने के लिए, तो ये कृष्ण ने चक्र से काट करके फेंक दिया। इसलिए बड़ी लंबी चौड़ी सेना लेकर के वो जाकर के द्वारका पर आक्रमण, तो कृष्ण ने क्या किया उसको भी मारा, उसके सेना को भी काट करके चक्र को आदेश दिया जे काशी को जला करके एकदम खाप, वहां पर कोई रहने ना पाए, बस वहां जा करके वो काशी को जा करके जला करके खा। शिव वहां से भगे, पार्वती जी भी भगे, सब जितने उनके गण थे वो भगे। भग करके कहां हम आश्रय लें, अंबिका कानन
एकाम्र कानन
में, फिर पीछे वहां से भी लौट करके फिर देखा जैसे हमारी रक्षा यदि गौधाम में जाएं हमारे अपराध दूर हो सके, वो राजा वो शंकर जी, इसलिए गौधाम में यहीं पर उपस्थित हुए हरिहर क्षेत्र। वहां पर अलकानंदी नंदा मंदाकिनी इत्यादि की धाराएं आज भी देखी जाती है। अलकानंद के किनारे में वो कैलाश है, इसलिए वहां पर, किंतु ये स्थान काशी और एकाम्रकानंद जो पुरी के अंदर में पास में है भुवनेश्वर, उसे भी पवित्र और सिद्धिदायक है, अपराधों को दूर करने वाला और चैतन्य महाप्रीत करुणा को देने वाला, इसलिए शंकर जी ने यहीं पर आकर के वास किया। यहाँ पर सुंदर आम के यहाँ पर भी पूंज थे, हम लोगों के देखते देखते वो आम के पेड़ भी काट दिए, इमली के बड़े बड़े पेड़ थे पुराने अभी कितने हैं, दो
है,
और पहले एकदम भरा हुआ था, सब छाया में हम लोग बैठते थे वहाँ, वहीं पर एक बार हम लोगों ने प्रसाद पाया था, वहीं पर रसोई बनी थी, जब वहाँ पर पानी नहीं था
नरसिंहपुर
तो वहाँ से लौट करके यहीं पर सब ने डेरा किया और वहीं पर हजारों आदमियों को प्रसाद पाया, फिर वहाँ से शाम को नदी को लौट, वो नदी भी वहाँ पर अलका नंदा गंगा के लिए त्याग पर गंगा की धाराएं वहाँ पर आज भी बहुत ही पवित्र स्थान है कृष्ण भक्ति देने वाला। और भी शंकर जी के संबंध में ऐसा भी सुना जाता है, जो शंकर जी बाणासुर का ये पक्ष लिया, जब अनिरुद्ध या कौन
अनिरुद्ध
ही अनिरुद्ध जी जब पैदा हुए तो पैदा होने के कुछ ही दिन के बाद में देखा जो न जाने कहाँ चले,
उषा के साथ जब उनका प्रणय हुआ था,
उषा के साथ
हाँ।
तो उसी समय में
चित्र लिख रहा था पर उखाड़ के नहीं,
तो वहीं से उनको लेकर के उठा करके चले ले गई माया के द्वारा, वहां पर ले गया कौन ले गया शंबरासु उनसे युद्ध हुआ, युद्ध में सब लोगों ने मिल करके अनिरुद्ध को कैद खाने में डाल, फिर नारद के द्वारा पता चला जैसे वहां पर बंदी है, तो वो सब आक्रमण करके दोनों में भीषण युद्ध हुआ बाणासुर से और कृष्ण का, उसमें शंकर जी को पक्ष लेना पड़ा, दोनों में खूब युद्ध हुआ, बराबरी बराबरी कांटे का युद्ध चल रहा था। तो कृष्ण ने, शंकर जी ने पाशुपत अस्त्र चलाया या जर रुद्र ज्वर, और सब कृष्ण ने वैष्णव जर के द्वारा उनको एकदम ऐसा कर दिया कि बाण टाण सब हाथ से गिर पड़े और कांपने लगे और मूर्छित होकर के गिर पड़े। उस समय कृष्ण ने बाणासुर के हजारों हाथों को काट दिया, और जब एक दो चार हाथ बच गए तो इतने में पार्वती जी सामने आ गई, या बस किसी प्रकार से उनके प्रार्थना से। तब फिर कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि अब ये चार हाथ रहेंगे और शंकर जी का ये पर त्याग होकर के रहेगा और सब समय इनकी सेवा करेगा। फिर उसको छोड़ दिया।
प्रहलाद
महाराज जी का भी है,
मैंने प्रहलाद वही कुल असाधारण होना छेड़
दिया, चार हाथ के वंश में था, प्रहलाद जी के वंश में, इसलिए महाराज उसके वंश के किसी को मारते नहीं थे। एक पीढ़ी के जितने लोग हैं उनका तो उद्धार होना चाहिए, इस पीढ़ी में ये भी पड़ता है, इसलिए मारा नहीं बल्कि उसका उद्धार कर दिया। उद्धार क्या किया?
शिव
जी का परिकर कर दिया, अपने गण में नहीं लिया। अपने गण में लेने के लिए बहुत कुछ ब्रजवासियों के अधीन में सेवा करनी पड़ती है, बहुत। इस तरह से देखा जाता है जो कृष्ण के ये और भी लौकिक लीला में उन्होंने दिखाया कि उनको पुत्र नहीं हो रहा था किसकी,
कृष्ण
ने किस पत्नी से, और तो सबके पत्नियों के हुए हैं,
सांबो का
वो उसके माता जी उनके पुत्र नहीं हो रहे, और वो बड़ी दुखी थी, ये रुक्मिणी सत्यभामा सबको पुत्र हुआ और हमको पुत्र नहीं हुआ। इसलिए कृष्ण गए कैलाश में, वहां पर शंकर जी की आराधना की, दिखलाया जो शंकर जी पुत्र दे सकते, और शंकर जी ने कहा जाओ मस्त तुमको लड़का, तो सब उनके लड़के सांब उनके लड़के के रूप। तो यहाँ पर कृष्ण को भी वरदान माने, साधारण मनुष्य कुछ भूल कर जाते, लौकिक लीला दिखलाया उनको कुछ प्रतिष्ठा दी, इसलिए शंकर जी उनके वरदान देने वाले नहीं, या किसी को वो अभी संपाद भी देने वाले कृष्ण को नहीं होंगे और न बर देने। जैसे एक ब्राह्मण था, महाप्रभु को अपनी संपाद कर दिया, जाओ तुम हमको राष्ट्र अपने कीर्तन में नहीं आने देता है, इसलिए तुम्हारा गार्हस्थ सुख और तुमको घर छोड़ करके जाना। लोग कहते हैं जैसे ये ब्राह्मण का ये अभिसंपात महाप्रभु को लग गया और अपनी स्त्री को मैया को घर को छोड़ करके उस ब्राह्मण के, और दिखा दिया तत्पा शुद्रस्त जन स्वजन आर्ज बचसा, आर्ज बचसा माने उस ब्राह्मण नारद जी के साथ से नारायण को रामचंद्र जी के रूप में, ये सब ये कारण नहीं है। ब्रह्मा जी के चोरी करने से लड़कों को और ग्वाल बालों को और गायों को बछड़ों को हरण कर दिया, ये सब कृष्ण की योग माया कराती है, ऐसे ही समझना चाहिए। शंकर जी उनके सब प्रकार से बहुत प्रिय हैं, और प्रिय होने के नाते अभिन्न हरिहर। वहीं पर महाप्रभु जब जिन जिन स्थानों में मैंने कहा वहां वहां पर महाप्रभु जी अपने परिकरों के साथ में मृदंग करताल कांसर खोर और
सिंगा
मैंने बड़ा सिंगा बहुत बड़ा धू 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 बोलता है, आगे कीर्तन में बजता था और लोग उसमें नाच उठते थे, वो सब लेकर के हजारों आदमियों को लेकर के कीर्तन करने के लिए जाते। जब निसिंगपल्ली से लौट रहे हैं, जब मध्यद्वीप में प्रवेश किया तो उस समय में शाम हो गई, महाप्रभु जी अपने गणों के साथ में थे, नित्यानंद प्रभु उस दिन नहीं थे, इसलिए महाप्रभु जी को आवेश हो गया। किस चीज का आवेश हो गया? उस लीला में जब वो गोचारण करके लौट रहे और गोपियों उनको देख रही हैं, खुलेंदी वरकांत मिंदु बदनम बरहा वतन संप्रियम शिवशंख मुदार कौसुम उदारम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्प्लावचित्तम गो गो प्रसंगा। गोविंदम कलवेलुवादन परम दिव्यांगम भूषा फुलंदीवर फुल्ल इंदीवर कांति इंदुवर। कैसे उनके उनका अंग कैसा है? इंदु माने जो नील रंग का जो कमल है और उसमें आभा आ जाए, कैसी मोती में जैसे आभा होती है,
लावण्य
पानी होता है, लावण्य होता है, ऐसे बहुत परम सुंदर और उसमें सुगंध भरा भरा कमल जैसा और वैसा ही कोमल उनका श्रीअंग है। तो फुलेंदी वर्तंत मिंदु बदनम बरहावतन संप्रियम, बरहावतन यहाँ पर सुंदर वो मुकुट मूर्ति पुंज यहाँ पर टेढ़े बाएं तरफ में कुछ झुके मानो मोर के पंख कह रहे हो मैं आपके सिर पर नहीं रहूंगा, कहाँ रहूंगा, इसलिए उधर वे झुके हुए राधा जी के चरणों की तरफ। अतः सिर ही कृष्ण का झुक रहा है अपने आप उधर, ऐसा सिखी कुछ और सुंदर पीतांबर माने स्थिर विद्युत जैसे उनके कपड़े कृष्ण के ला रहा है। हमने देखा है कभी काला पीतांबर धारण कराते हैं, कभी हरा सा लगा देते हैं, कभी लाल धारण करा देते हैं। तो हरा तो कभी कभी चल सकता है,
पीत रंग के अंबर तो पीतांबर काला
कभी कभी हरा चल सकता है, वस्त्रों का आदान अदल बदल हो सकता है, किंतु लाल काला सादा हाँ तब कभी कभी ऐसा हो सकता है। इसलिए नैनोत्पलार्थित परम अपने आंखों से गोपियां उनका आरती उतार रही है शाम के वक्त और कृष्ण भी उनकी आरती को ग्रहण कर रहे हैं। वो फूल दीप नहीं, उनकी आंखें ही दीप हैं, उसमें स्नेह जो है हृदय का उसमें तेल है और उसमें बत्ती जल रही है आंखों से जो उनके निकल गए हैं और उसी से अर्चन कर रही है वो, तन्मय हो गई है अर्चन करते करते। अब कृष्ण कैसे गो गो अवतर से परिविष्टित और तिरी तिरी निरी तिरी ऐसे करते हुए शब्द और गायों को एक तरह से भंसी बजाते हुए सबको एकत्र करते हुए सुंदर सुंदर चरण कमलों से जितने प्रकार के चिन्ह हैं उन चिन्हों से पृथ्वी को खुश करते हुए और शाबाश शाबाश उनके सकालों का और कृष्ण के गैया बढ़ती आगे और कृष्ण की बंसी यदि पीछे यदि सुनाई पड़ते हैं तो ठहर जाती है, पीछे रुक जाती हैं जब कृष्ण आते हैं तो पीछे। ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते हुए ब्रज में गोविंदम कलमेलुवादन परम दिव्यांगम ऐसे कुछ तो महाप्रभु को लीला का स्मरण हो गया, बस इसी में रम गए, सोचा कि मैं राधा जी हूँ, कृष्ण जी बंसी बजाते हुए चल रहे राधा बन जी क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने ऐसे भी भावित होकर के ब्रज में लीलाएं करके अपने सखाओं के साथ में फिर माया से एक एक समय में एक एक दिन में कभी गोत्रम द्वीप कभी मध्य द्वीप कभी सीमंत द्वीप कभी ऋतु द्वीप कभी कहीं कभी कभी और वहाँ की लीलाओं का स्मरण होता है। इसलिए ये कौन सा वन हुआ जब फिर रहे हैं, कौन सा वन हुआ
महाप्रभु कौन जगह
महाप्रभु जी को ये नृसिंहपल्ली से जब आ रहे हैं मध्य द्वीप में प्रवेश करके नदी के किनारे किनारे जब हम लोग आते थे पहले इस बार दो एक वर्ष से तो नहीं जा रहे तो उसी रास्ते से तो इसी को कहते हैं कौन सा ये है, या तो कभी भंडीर बंद भी कर सकते हैं होने से भी अभी भंडीर बंद हो सकता है, कभी गोबर जमुना का किनारा का कोई बंद हो सकता है, इस तरह से ये सब लीला करते हुए महाप्रभु प्रत्येक वन में जब ऋतु द्वीप में जाते हैं तो एकदम समझते हैं कि मैं राधा कुंड श्याम कुंड और ये कौन राधा कुंड और गोवर्धन के बीच में कौन सा कुसुम सरोवर सूर्य कुंडी इत्यादि ऐसी भावना से इधर जब जहाँ पर जाते थे वैसे ही लीला होता। वृंदावन में जब पहुँचते थे तो कृष्ण और बलदेव गोचारण के लिए जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु उनके साथ तो वहाँ का लीला का कभी लठिया लेकर के फिरते हैं इधर उधर करते हैं, सब लोग आविष्ट हो जाते हैं। ऐसे महाप्रभु जी सतीला करते हैं। वहाँ से हम लोग चल करके सुवर्ण बिहार में, वहाँ पर लीला बदलाते हैं। प्राचीन काल में एक राजा थे सुवर्ण सेन, वो सुवर्ण सेन राजा की राजधानी वहां पर थी सुवर्ण बिहार। बिहार माने कहते हैं आवास स्थान, जैसे लंका सोने की थी ऐसे ही उनका स्वर्ग था, और पुत्र परिवार के साथ वहां रहते थे। बहुत दिन पहले, हो सकता है कि ये द्वापर की या त्रेता युग की बात है, उनको भगवान के नाम लेने की कोई फुर्सत नहीं थी, विषयों में प्रमत्त थे और उनको सब सुख था, उनको कभी भी चिंता नहीं होती थी भगवत भजन की। एक समय चलते 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 जगदीच्छा क्रम से सौभाग्य से नारद जी उनके यहाँ पर, नारद जी ने कहा, नारद जी का खूब अवभगत उन्होंने की अभिनंदन किया और उनको आसन पर बैठा करके अपने नीचे बैठ करके और हाथ जोड़ करके कुछ प्रार्थना कर। नारद जी ने पूछा, कुशल है? हाँ मेरा पूरा कुशल है। अन्धान्य ठीक है? ठीक। स्त्री बात मानती है, झगड़ा करती है? ठीक। लड़के सब हैं? हाँ सब। तुम्हारी बात बहुत मानते हैं? हाँ सब। मेरा आदेश था। सेनाएं तुम्हारे अधिकार में है? उनका वेतन ठीक से देते हो? सब सांसारिक चीजों को पूछ। जब उनका सब कहना समाप्त हो गया, कहीं से तुम्हारा जैसा विषय घोर और मूर्ख जगत में कोई भी नहीं, तुम समझता है कि मैं संसार में सबसे सुखी हूं, हमारा भंडार सब अथाह रत्नों से और रुपयों से वैभव से भरा हुआ है, किंतु तुम सबसे दुर्भागा है। तुमको भगवान का चिंतन करने का भी अवकाश है? बोलो तो। इसके पहले हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ बड़े बड़े राजा हो गए। सुनते कि उनकी पुरिया सोने की बनी हुई, तुम्हारी कितनी है? आज कहाँ है वो? आज वो राज वैभव कहाँ है? तुमको कितने बेटे हैं? पांच बेटे हैं। अरे उनको कितने लड़के थे? रावण को
1 लाख
पुत्र और 1.25 लाख नर। और अंत में
होना रहिला वंश से बात की,
कोई भक्ति देने वाला भी नहीं रह गया, तो वो वंश कहाँ गया? वो सोने की लंका कहाँ गई? वो राज्य कहाँ गया? मंदोदरी इत्यादि जो उनकी रानियां थी वो सब कहाँ गई? और वो भी बलि महाराज बड़े भारी बलवान थे, उन्होंने सातों ऊपर के लोग और नीचे के लोगों को विजय कर दिया। ब्रह्मा को भी वो हटा देने की चेष्टा में था, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से वो सब कुछ। आज वो बलि महाराज कहाँ है? उनका वैभव कहाँ है? लोग अपने को राजा कहते हैं, पृथ्वी का पति, भूपति, तुम भूपति या तहा मैं भूपति हूँ, पृथ्वी हस्ती है तुम्हारे ऊपर, भूपति हमारा तो पति वही एक है। ये कहते हैं ये जमीन मेरी है, इसके बाद तुम्हारी ये जमीन है, उसके बाद उसका मौका, ये घर हमारा है। कब से तुम्हारा घर हुआ? जन्म के पहले से या जन्म के बाद भी तुम्हारा घर है? ये रुपया कहाँ से मिला तुमको? ये लेकर के जाएगा एक चीज भी? खूब विचार करो, अच्छी तरह से देखो ये जगत का, क्या तुम इतना जो कमाई किया, इतना जो परिश्रम किया, झूठ सच बोला, इतना परिश्रम किया, इसका एक भी कोई चीज जाएगी कि नहीं तुम्हारे साथ में? भाई तो ये कुछ भी नहीं जाएगी, तो तुम्हारे जैसा कौन मूर्ख होगा जो इतना परिश्रम बेकार करेगा? खूब अच्छी तरह से उनको देखो, तुम ये शरीर नहीं है, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। बतलाओ तो तुमको क्या मिला इस जगत में? इसलिए अभी से तुम भगवान का भजन करना आरंभ करो, अभी से तुरंत, समय नहीं है, काल कब तुमको पकड़ ले जाएगा? इसलिए भगवान का भजन, मैंने कहा जैसे देखो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि इस जग इस भूमि में है, इस भूमि में भगवान स्वयं कलिकाल में अवतरित होंगे, तुम इसी मंत्र से तुम कीर्तन करो, कुछ मत करो, तुम सब कुछ करो, घर में रह करके ही कीर्तन करो बस, और कुछ मत, बस उनको कीर्तन करो, भगवान का नाम कीर्तन करने का दिया कज सब करते रहो। कुछ दिनों के बाद में राजा ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको दर्शन दिए पिता और बोले जी देखो कुछ दिनों में मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होऊंगा, उस समय तुम्हारा भी जन्म यहाँ पर होगा, गरीब के रूप में होगा, बुद्धिमंत खां वही बुद्धिमंत खां के रूप में, और तुम हमारी शादी कराएगा, शादी कराया था हमारी विष्णु प्रिया का, जब शादी होगी तो उस समय में तुम शादी में पूरा रुपया खर्च करेगा और इस प्रकार से सेवा और हमारी लीलाओं का तुम दर्शन करेगा। वो कृतार्थ हो गए, उनका दर्शन करेगा, वो सवर्ण सन राजा का इसमें उन्होंने शिक्षा दी। ये सब कुछ भी रूप शरीर रुपया पैसा कुछ भी काम में नहीं आएगा, इसलिए अभी से जो जहाँ पर है, जहाँ पर स्थानीय पिता तनुवांग मनोगी प्रायश वो अजित जीतो अस्त प्रयत्न चल, जो जहाँ पर जिस अवस्था में है वहीं से अपना भगवान का, जो गृहस्थ है तो गृहस्थ, त्यागी है त्यागी है, जो शूद्र है तो शूद्र, स्त्री है स्त्री, पुरुष है पुरुष, डोम चमार है तो वहाँ, जहाँ से हो भगवान के लिए ये सब पार्थक्य नहीं है। हरि का भजा सो हरि का हो, इसलिए जो जहाँ पर है वहीं से भगवान का भजन, भगवान का भजन करना खूब कठिन नहीं है, खूब सहज। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को मारना पीटना, इसमें क्लेश हो सकता है, किसी को कष्ट देना, इसमें कुछ परिश्रम हो सकता है, किंतु भगवान का भजन करने में कोई भी परिश्रम, हरे कृष्ण कह दिया बस, उनका भजन मन से ये कह दे मैं तुम्हारा हूँ, बस यही भजन, इसलिए भजन करना कोई कष्टकर व्यापार नहीं। वहाँ से हम वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उस स्थान पर गए थे अपने भक्तों के साथ में कीर्तन किया, वहाँ से हम लोग नृसिंहपल्ली गए। नृसिंहपल्ली नृसिंह देव का क्षेत्र कहलाता है, हमारे भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में, जहाँ पर आज शायद कंधार काबुल इत्यादि है, उधर ही कोई क्षेत्र था, वहीं पर नृसिंह देव का जन्म, वहीं पर वो हिरण्यकश्यप की राजधानी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कोई क्षेत्र था न, तो वहीं पर उनका आविर्भाव हुआ था और वहीं पर हिरण्यकश्यप मार करके प्रहलाद की रक्षा की, किंतु विश्राम किया था वहाँ, नवदीप धाम के अंदर में नृसिंहपल्ली के क्षेत्र में उन्होंने विश्राम किया, इसलिए वो विश्राम स्थली देवपल्ली का लगा। अजय इतना दूर कैसे पहुंच गए, वो नृसिंह जियड़ है, पाना नृसिंह वो दूसरे, वो उनके पीछे के मूर्ति, मुल्तान मुल्तान में आविर्भाव हुआ पीछे से, वहां पर उन्होंने विश्राम किया। जैसे बड़ा देव का आविर्भाव हुआ था ब्रह्मा जी के नाक से, किंतु उन्होंने पृथ्वी को अपने धुरी पर रख करके और विश्राम किया था वो गंगा के किनारे, जहाँ पर लोग स्नान करने यहाँ
सोरो 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 सोरो,
इसलिए वहाँ पर सोरो में बड़ा जी का वहाँ पर विश्राम किया, वहीं पर वो तिरुधान में खड़ा हुआ, ऐसे वहाँ पर विश्राम किया। उत्तम भागवत के लक्षण क्या है, जो लोग सर्वत्र भगवान को देखते हैं, सब में भगवान को देखते हैं, कौन भगवान को देखते हैं, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य को सबके अंदर में देखते हैं और सबको भगवान में देखते हैं, ऐसे भक्त महाभागवत हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, वो लोग सर्वत्र ही ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचना कांक्षित इत्यादि से भी बहुत ऊपर है, प्रहलाद महाराज को इस कोटि में देखा जाता है, जो अपने आराध्य को सर्वत्र देखते हैं, उनका कहीं भी द्वेष और अपना प्रिय कहीं नहीं मिल जाता, वो इससे ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी महाभागवत होने के नाते उनके पिता ने उन पर जो कुछ भी अत्याचार किए उसके लिए प्रभु से उन्होंने एक बार भी प्रार्थना नहीं की कि हमारी रक्षा कर। देखिए हम मेरी रक्षा तो कर ही रहे हैं और क्या रक्षा हमारे को, हमको मार कौन सकता है? चिन्मय शरीर को न हवा सुखा सकती, न पानी भी जा सकता है, न बिजली उसको स्पर्श कर सकती है, न अस्त्र शस्त्र काट सकता है, तो इसमें रक्षा करने की क्या बात है? इसलिए प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप स्पर्श भी नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या प्रार्थना करेंगे? हरिदास ठाकुर किस लिए प्रार्थना करेंगे जो 22 बाजार में मारे, उनको तो वो उसे कहाँ स्पर्श कहाँ करेंगे? भीष्म पितामह के कृष्ण को कोई बाण मार सकता है? नहीं मार सकता, इसलिए हजारों बाण मार रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे प्रभु को तनिक भी नहीं लगेगा। सब समय उनको ब्रह्म के रूप में देख रहे हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, उनको ये जड़ीय बाण उनको छू नहीं सकते, किंतु वो बाण से ऊपर से देखने वाले लोगों को, नर लीला वाले सखाओं को मालूम होता है कि छलनी कृष्ण के शरीर को। इसलिए भीष्म पितामह को मारने के लिए अर्जुन को जरूरत है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी जो ज्ञानी भक्त हैं उनकी दृष्टि में भगवान को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, बाण भी नहीं कर सकता है। इसलिए ये लोग भागवत की दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भगवान में भगवान की बुद्धि रख करके उनको प्रभु मानने वाले ऐश्वर्य ज्ञान से, इसलिए उनको कहते हैं ज्ञानी, किंतु भक्त उनकी सेवा में रहते हैं। और दूसरे होते हैं शुद्ध भक्त, और तीसरे होते हैं प्रेमी भक्त, चौथे होते हैं प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त, और इनके सिर पर भी पैर रखने वाली गोपियों की झरण धूलि को धारण करने वाले ब्रज के लोग, और उन भी सर्वश्रेष्ठ माता पिता सखा लोग हैं, उनसे भी वात्सल्य वाले जसोदा और नंद बाबा, और उनसे भी श्रेष्ठ गोपियाँ, उन समस्त गोपियों में अष्ट सखियाँ, उन अष्ट सखियों में भी दो प्रधान, उन दोनों में भी राधिका जी, ये कृष्ण की अत्यंत, ये सनातन गोस्वामी ने बृहद प्रवर्तन किया। चैतन्य महाप्रभु के परिकरों ने ही ये सब चीजें की, चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं सनातन गोस्वामी हैं, इसलिए ये लोग सब ये तारतम्य, ये सब लोग ऐसा समझ करके अपना भजन निर्णय करना चाहिए, हमको कौन सा भजन करना चाहिए, किस रूप में भजन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु नहीं आते और उनके परिकर नहीं आते तो ये स्थिर ही नहीं होता कि कौन सा भजन। सबसे हम कहते हैं ये सनक सनंदन सनातन जी का भजन सबसे श्रेष्ठ, हम ब्रह्मा इससे बढ़कर क्या हो, क्योंकि मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। किंतु चैतन्य महाप्रभु अनुग्रह करके आए और अपने परिकरों के द्वारा दिखलाया जी ये सबसे गया भीता अपराध युक्त ये भावना है, ये भजन ही नहीं है। तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी तुमसे मैं कब, स्त्री कहेगी जी मैं ब्रह्म, और पुरुष कहेगा जी मैं ब्रह्म, लड़का कहेगा जी मैं ब्रह्म, और चपरासी का कहेगा मैं ब्रह्म, और जज साहब कहेंगे जी मैं ब्रह्म, कोई किसी से कमी यहां पर झगड़ा होगा बखेड़ा होगा। इसलिए दास और प्रभु का संबंध होना है, तब उसमें झगड़ा नहीं होगा, और नहीं तो सभी ब्रह्म हो जाएंगे तो सभी लड़ेंगे झगड़ेंगे मरेंगे, कोई कम नहीं किसी से,
कौन ब्रह्म किससे लड़ेगा।
इसलिए ये विचार सब गलत है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने कृष्ण का वैशिष्ट, भक्तों का वैशिष्ट दिखाया और उपासना का ये तारतम्य दिखलाया। इसलिए अद्वैत ब्रह्म में जो भावना है उपासना की, मैं भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म कृष्ण ब्रह्म है, मैं मुक्ति होने के बाद में मैं ब्रह्म ही में मिल जाऊंगा या ब्रह्म हो जाऊंगा, यह उपासना एकदम रद्दी टोकरी, वैष्णव लोग इसको स्पर्श नहीं करते, उसके तरफ नहीं देखते, उसमें भी दास वाला श्रेष्ठ है। कृष्ण प्रभु है मैं उनका दास हूं, राम प्रभु है मैं उनका दास, मैं सेवक रघुपति पति मोरे,
यह भाव जाए जनु दूर,
यह जो भाव है यह कभी भी भूल करके भी ये दूर न होने पाए तुलसीदास। किंतु यह दास भी चार प्रकार का है, यह दास चार प्रकार का, यह दास कौन, दास सत्य वात्सल्य। राम में दास और शांत हैं, नारायण में शांत और दास, राम में कुछ और बढ़ करके उसमें कुछ दास्य का विशेष भाव,
नारायण का दास्य और रामचंद्र जी का दास्य दोनों एक नहीं है। नारायण के जो दास हैं वो वंदना स्तुति बस करेंगे और कुछ नहीं, और राम के जो हनुमान जी के जो राम हैं उनको भूख लगेगी, खाने के लिए लाएंगे। उनके सीता को कोई हरण कर ले जाएगा तो उसको उसके सोने की लंका को गिरा देंगे।
नारायण को भूख नहीं लगती है?
कहाँ भूख लगती है,
दिखला लक्ष्मी सबको निकाल दिया और प्रभु खाने का समय हो गया।
वहाँ पर किसी को भी नारायण का जन्म है न मरण, ना भाव है न
भूख तो लगती है,
भूख भी नहीं है, उनका कोई बेटा भी नहीं है और कोई पिता भी नहीं है, उनकी मैया भी नहीं है, भूख भी नहीं लगती है। कभी कभी दिखलाने के लिए हो सकता है, किंतु उनको वहाँ रात्रि दिन नहीं होता है तो फिर भूख तो होगा वहाँ पर, भूख तो वहाँ पर बस हाथ जोड़कर प्रभु मैं बहुत दीन दीन हूँ आप हमारे बस ऐसे। रामचंद्र जी में बहुत प्रकार की सेवा है, राम को सर्दी गर्मी भी लगती है तो हनुमान जी अपने पूंछ से
चमर बना लेते हैं,
उनके लिए झोपड़ी बना देंगे रहने के लिए। और नारायण के लिए झोपड़ी की भी जरूरत नहीं है, उनकी तरह तरह की नर लीलाएं हैं, इसलिए यहाँ पर सेवा के बहुत सी सेवाएं। और यहाँ से अधिक सेवा जरूरत है, इस तरह से सेवा का विकास। इसलिए रामचंद्र जी में अढ़ाई रस रखा गया, आधा आधा दो सख्य और दास्य, आधा वात्सल्य का आधा शांत और दास्य पूरा, सख्य का आधा और वात्सल्य का
आधा, तो एक हो जाएगा
नहीं होगा, वो आधा ही रहता है, आधा कभी पूर्ण नहीं होगा,
आधार आधा तो
नहीं होगा। इस जगत में आधा आधा एक हो जाएगा, उस जगत में आधा सब समय आधा रहेगा, नित्य रहेगा
नहीं, दो आधा मिलके नहीं होगा,
नहीं होगा।
अरे वो आधा ही आधा अलग अलग,